ओम शांति। आज ज्ञान सरोवर के इस प्रांगण में योग भट्टी अर्थ दिल्ली के वाराणसी के तरफ से और अंबाला भरूच के तरफ से आए हैं। आप सबका तो बहुत बहुत स्वागत है। ये जनवरी जो महीना है, वरदानी मास है और वरदानी भूमि में आप सब आए हैं। आप सभी यहाँ जब आए कुछ संकल्प लेके आए होंगे। 3 दिन का मूल्य समय निकाल करके आप सब आए हैं। लक्ष्य तो देंगे ही दीदी, मगर फिर भी आप सबके व्यक्तिगत मन में पुरुषार्थ अर्थ संकल्प तो होंगे ही। हम आज के कार्यक्रम आरंभ करने के पहले हम सबके अति प्यारे यज्ञ के वरिष्ठ हमारे मम्मा बाबा के पालना में पले रमेश भाई जी आज ही के दिन सवेरे अव्यक्त हुए। उनके प्रति हम सब ब्राह्मण बच्चों के ब्राह्मण परिवार का एक कर्तव्य बनता है दिल से मन से श्रद्धांजलि अर्पण करें। तो सबसे पहले हम 1 मिनट बाबा की याद में उस आत्मा के प्रति श्रद्धांजलि अर्पण करके फिर आरंभ करते हैं। आप सभी हमारे आदरणीय निर्मला दीदी से तो परिचित होंगे ही, पर फिर भी ये कहते हुए गौरव महसूस होता है, आप भी इस यज्ञ के आदि रतन हैं और 40 साल से आप विदेश की सेवा करते, कई देशों में आपने अनेक अनेक आत्माओं को अपने निर्मल मन और अपने ही जीवन से कईयों की जीवन बनाए हैं। आज आप ज्ञान सरोवर अकादमी के आप पूरा देखभाल करते हैं, आपके पालना में हम सब पलते रहते हैं। यहाँ जो भी कार्यक्रम होता है आपके मार्गदर्शन से होता है। आप अपने अमूल्य समय निकालकर हम सबके बीच आए हैं और उनके क्लास भी आप सुनेंगे। बहुत ही प्रैक्टिकल और बहुत सहज रीति से अपने जीवन में लागू करने की बहुत अच्छी अच्छी बातें अब बताते हैं। हम उनसे आशीर्वचन तो सुनेंगे ही। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम आदरणीय दीदी से सुनेंगे भट्टी जो 3 दिन हम सब करेंगे, वो भट्टी किस लक्ष्य से किस उद्देश्य से हम करें, क्या हमारे मनसा होना चाहिए।
ओम शांति। अपने आप को भाग्यशाली समझते हो? क्योंकि कई चाहते हैं कि पांडव भवन या ज्ञान सरोवर में हम भट्टी करें, परंतु आजकल सब कॉम्प्लेक्स बिजी रहते हैं, इसलिए बहुत कम भट्टी का चांस मिलता है। ये तो अचानक हमने सोचा कि अभी विदेशी गए और दूसरा ग्रुप आने में टाइम है, तो हमने कहा बीच में एक ग्रुप की भट्टी कर ले में, तो इसलिए आप लोगों को थोड़ी ही नोटिस मिली होंगी 1 मास की करीब। तो हमने कहा 1 मास की नोटिस है, जो भी आ सके आवे। तो आरसी ने रिक्वेस्ट किया था काफी समय से और अंबाला ने भी किया होगा, तो इसलिए उनको चांस दिया गया। तो यहाँ आए हैं 3 दिन, कोशिश करना जितना समय हो सके मौन में रहना, और दिन का आपको लक्ष्य दिया जाएगा वो लक्ष्य अनुसार आप अपने आप को तैयार रखना, उस स्थिति में रहना और उस अनुसार लाभ लेना। क्योंकि कल का दिन है, यहाँ का आपको सबको टाइम टेबल वो लिखत में नहीं मिलेगा, मैं बता देती हूँ। जैसे सवेरे 4 से 4:45 योग है, योग होगा 6:30 से 7 मेडिटेशन, 7 से 7:45 मुरली और 7:45 से 8:15 बार प्लाजा में एक्सरसाइज कराएंगे, या तो शांति से वॉक जिनको करना है वॉलंटरी जा सकते हैं। 7:15 से 9 बजे तक ब्रेकफास्ट, 10 से 10:30 मेडिटेशन, 10:30 से 11 मुरली रिवीजन, और कल का सब्जेक्ट होगा श्रीमत का महत्व ब्राह्मण जीवन में। फिर शाम को 4:30 से 5 क्रिएटिव मेडिटेशन, 5 से 6:15 शिलुबेन का क्लास होगा वृत्ति द्वारा वायुमंडल परिवर्तन। तो कल ये दो टॉपिक होंगे, वृत्ति द्वारा वायुमंडल परिवर्तन और श्रीमत का महत्व ब्राह्मण जीवन में। और फिर रोज 6:30 से 7:30 पावरफुल मेडिटेशन होगा, 7:30 से 8:30 डिनर और 8:30 से 9:45 वीडियो या चैट। या तो आप कोशिश करके मौन में रहना, फोन है बंद कर देना। आज अभी जाके जो भी लौकिक अलौकिक को फोन करना है, कुछ समाचार देना है, देकर बोल देना कि हम यहाँ मौन में बैठे हैं, फोन अर्जेंट काम हो तो ही करें, नहीं तो ना करें। परंतु आप खुद फोन किसी को नहीं करना, और करे तो भी बीच वाले टाइम में करे जबकि आप फ्री है। तो जितना आप लक्ष्य रखेंगे कि यहाँ से हमें मैक्सिमम लाभ लेना है, तो लक्ष्य रखने से क्या होगा कि आप लाभ ले सकेंगे। अपने सिर्फ आवाज से मौन नहीं, पर मन से भी फालतू विचार नहीं आने दो, क्या करना है, कहाँ जाना है, क्या खाना है। क्योंकि मधुबन में तो ये फायदा है कि आपको खाना पकाने की चिंता नहीं, शॉपिंग करने की चिंता नहीं, सफाई की चिंता नहीं, सिर्फ तैयार भोजन खा के जो भी मिला प्यार से बाबा की याद में भोजन खा के बस अपनी मस्ती में बाबा की याद में रहना। ये जब आप लक्ष्य रखेंगे तो इससे क्या होगा कि इससे आपका लक्ष्य रखने से और अटेंशन रखना है कि मैं जब भी योग में बैठी हूँ मैं जरूर एकदम अशरीरी और हो सके तो निराकार स्थिति में रहूं। क्योंकि अशरीरी तो चलते फिरते भी रख सकते हैं, पर जब बैठते हैं तो निराकार स्थिति में, निराकार बनकर निराकार बाबा की याद में खो जा और बाबा से सर्व शक्तियां खींच लो। और लक्ष्य रखो कि आज मुझे प्यार की शक्ति लेनी, आज मुझे स्नेह की रहम की शक्ति लेनी है, आज मुझे शांति का लेना है, सुख का लेना है। लक्ष्य रखो तो जैसे फील होगा जैसे कि बाबा का ये शक्ति में हम स्नान कर रहे हैं और अपने को भरपूर कर रहे हैं। तो ये समझो लक्ष्य लेकर बैठेंगे ना तो वो क्योंकि वैसे तो चलते फिरते हम मनन मंथन करते रहते हैं और फरिश्ता स्वरूप का भी ध्यान में रखना है कि चलते फिरते हम फरिश्ता बन के रहे और बैठते समय निराकार स्थिति रहे। तो ये लक्ष्य रखेंगे तो जरूर आपको फायदा होगा और तीन दिन के बाद आप ऐसा फील करेंगे कि जितनी शक्ति हमने एक साल में जमा नहीं की वो हमने दो तीन दिन में जमा कर ली। तो ये लक्ष्य रखकर जाना और दूसरा आप देखना कि भोजन थोड़ा हल्का करना, स्पेशली ब्रेकफास्ट, क्योंकि ब्रेकफास्ट करने के बाद थोड़े ही समय में योग में बैठेंगे तो ब्रेकफास्ट भी हल्का करना, लंच भी हल्का करना और डिनर भी हल्का करना। तो इससे क्या होगा, नींद नहीं आएंगे। मेन बात यह है नींद ना आए, क्योंकि क्या होता है कि बाबा कहता है ना, माया कब सताती है, योग में। ज्ञान आप सुनते हो मनन मंथन करते हो तो इतना माया नहीं सताएंगी, पर जब योग में गहराई में जाते हैं ना तो नींद जरूर सताती है। इसलिए अटेंशन रहे कि हम निंद्रा योग करने ना बैठ जाए। और यदि नींद भी आई, हो सकता है नींद आए क्योंकि और बुद्धि को यदि बिजी नहीं रखते हैं तो नींद आए भी, तो क्या करो, 5 मिनट जरा इधर उधर चक्कर लगाओ, पानी पी के आओ आदि आदि, अपने को फिर स्फूर्ति में ले आओ, अलर्ट हो जाओ। तो अलर्ट और अटेंशन ये बहुत जरूरी है कि हम अपने मन पर अटेंशन रखें कि मन इधर उधर भटके नहीं। तो इसलिए जितना अपना अटेंशन होगा ना तो आप ज्यादा लाभ ले सकेंगे और नेचुरली आप यहाँ से जितना लाभ ले सकेंगे वहां जाकर घर में परिवार को लाभ दे सकेंगे, आसपास जो भी मित्र संबंधी सबको लाभ दे सकेंगे। तो इसलिए ये बुद्धि में रहे कि यहाँ हम आए हैं बाबा से अकूट शक्तियों का खजाना लेने और हमें भरपूर होकर ही जाना है। ओम शांति।
ओम शांति। थैंक यू वेरी मच दीदी। अब हमारे बीच मोहन सिंगल भाई है जिनका परिचय मैंने अभी दिया था। आप भी मम्मा बाबा से पालना लिए हुए काफी वरिष्ठ भाई हैं। हम उनके भी दिल के उद्गार सुनेंगे। मोहन भाई जी, वैसे आपका स्वागत अच्छी तरह से करने का था, डांस गीत, पर मौका ऐसा नहीं है इसलिए हम मौन से सिंपल रखा है। तो भी हम सुनेंगे मोहन भाई जी से।
ओम शांति। एक बार हम सब मिलकर के इस रीति से ओम शांति बोलेंगे जैसे कि हम सब ने सुना है यज्ञ के शुरू में बोला करते थे। अंदर एक गहरी श्वास लेकर और फिर धीरे धीरे श्वास को निकालते हुए और फिर हम सब ओम और फिर दूसरे श्वास में शांति। ओ प्रत्येक वर्ष जनवरी मास हमें अपनी संपूर्णता की ओर इशारा करता है। जब भी जनवरी मास आता है तो हम सभी मानसिक रीति से, इमोशनल रीति से, हर रीति से तैयार हो जाते हैं कि इस महीने में हमें विशेष पुरुषार्थ करना है। और बाप दादा भी हर वर्ष कुछ न कुछ विशेष पॉइंट देते रहते हैं जिन पर हम बच्चों का ध्यान बहुत अगर होता है तो देखा है कि अगर ध्यान होता है तो सफलता भी होती है और प्राप्ति भी बहुत भरपूर होती है। तो इस वर्ष बाबा ने जनवरी मास में जो अंत में तपस्वी मुहूर्त के रूप में कुछ जो शिक्षाएं मिलती रही हैं मुरली में, और साथ ही साथ इस महीने की जो मुरली आई है उनमें बाबा ने कुछ बातों की ओर जो विशेष इशारा दिया है, उन बातों के ऊपर हम विशेष ध्यान रखेंगे तो हम समझते हैं प्राप्ति बहुत अच्छी होगी। एक तो बाबा ने कई बार ध्यान खिंचवाया है, हे मेरे नींद को जीतने वाले बच्चों, तो बाबा की हमारे प्रति कितनी आश है। और हमें भी याद है क्योंकि साकार बाबा जब मधुबन में होते थे समय प्रति समय हम लोगों का आना यहाँ होता था और अनेक बार बाबा से मिलते थे, और बाबा रात को भी जागकर योग करते थे तो उससे इतना वातावरण सारा चार्ज हो जाता था मधुबन का कि कई बार हम लोगों की एकदम नींद खुल जाती थी जैसे झटके से, क्योंकि वो चार्ज्ड वातावरण खींचता था। और फिर कई बार हम उठ के देखते थे तो 2 बजे भी या 3 बजे भी बाबा, गर्मियों का मौसम, यहाँ गर्मियां तो कम ही होती थी लेकिन बहुत सुहाना मौसम, कई बार बाबा टहलते हुए बाहर की तरफ अक्सर करके मिल जाया करते थे। तो एक तो जो बाबा की ये आश है, ये मेरे बच्चे नींद को जीतने वाले हैं, तो कोई ना कोई हम प्रयोग अपने ऊपर जरूर ऐसा करें कि किसी भी दिन हम अक्सर करके, और यहाँ पर तो नॉर्मल रीति से तो हमेशा ही 3:30 उठते हैं लेकिन यहाँ पर अगर संभव हो बुद्धि का, मन का, अपने बायोलॉजिकल क्लॉक का अलार्म लगा के रखेंगे 2 बजे तो स्वतः ही बिना किसी उसके एड के, मदद के, अपने आप नींद खुल जाएगी। और फिर जब नींद खुलती है तो बहुत खुशी का अनुभव होता है, ओहो बाबा ने जगाया है तो बाबा को जरूर मुझे कुछ न कुछ विशेष टचिंग देनी है इसलिए बाबा ने जगाया है। तो बस तुरंत बैठ जाएं, और वास्तव में जब इस लक्ष्य से बैठते हैं तो एक विशेष टचिंग जरूर अनुभव होती है, और हमारा तो अपना ये व्यक्तिगत अनुभव अनेक बार कर रहा है। दूसरी बात बाबा ने जो इस बार इशारा खिंचवाया है, एक ये करवाया है कि अंतर्वाहक शरीर के द्वारा, तो हम सभी अंतर्वाहक शरीर, सूक्ष्म शरीर के द्वारा बस चक्कर लगाएं। और बाबा ने कहा है, हम सभी को मालूम भी है कि जो अमृत वेला का समय है वो अपने को भरपूर करने का समय है, जबकि जो नुमा शाम का समय है वो डिस्ट्रीब्यूट करने का, बांटने का समय है। तो अमृत वेला तो हम बहुत मतलब अपने को भरपूर करें अपने सूक्ष्म शरीर के द्वारा, जो बाबा ने बताया है कभी सूक्ष्म वतन, कभी मूल वतन, कभी कहीं का, 5 अवस्थाओं का चक्कर लगाएं और अलग अलग स्थानों पर भरपूरता का अनुभव करें। तो सुबह के समय तो हम सब लोग इस भरपूरता का अनुभव करें, और शाम के समय जब नुमा शाम को विशेष योग होता है तो बाबा ने कहा है उस समय बच्चे बाबा के साथ आ जाओ, बाबा भी चक्कर लगाने निकलता है, बाबा के साथ चक्कर लगाओ, पूरे सृष्टि का चक्कर लगाओ। और जो इतनी दुखी है, अशांत आत्माएं हैं, तड़पती हुई आत्माएं हैं, उनको बांटते जाओ। अगर हम जितना शाम को बांटेंगे नुमा शाम के समय तो सुबह भरपूरता के अनुभव की भी स्मृति रहेगी, और जब हमारे भरपूर होंगे तभी हम बांट सकेंगे। एक ये बात बाबा ने विशेष जो बताई है। तीसरी बात बाबा ने इस बार विशेष लक्ष्य दिया है हम बच्चों को सकाश देने का। तो ये शाम के समय बांटने का तो है, लेकिन सकाश, वैसे तो सृष्टि में सभी आत्माएं दुखी अशांत हैं, उनको सकाश दें, लेकिन साथ ही साथ बाबा ने कहा है जो आत्माएं विशेष कोई किसी चीज से बहुत सफरिंग कर रही हैं, चाहे तन का दुख है, चाहे मन से दुखी हैं, चाहे कोई परिस्थितियों से, कोई भी संबंधों से, उन आत्माओं को विशेष हम इमर्ज करके सकाश दे, शक्ति दे। हमें बाबा की एक बात याद आती है, आप लोगों ने भी सुनी होगी। हमारे एक दादा विश्व किशोर हुआ करते थे, यज्ञ का संभाल शुरू से बहुत करते थे। तो लगभग 67 की बात है, उस समय उनको कुछ प्रोस्टेट की तकलीफ वगैरह थी, बॉम्बे गए तो बाबा को जैसे ना वहां पर उनका ऑपरेशन वगैरह भी हुआ, तब मेडिकल साइंस तो इतनी एडवांस नहीं थी, तो उनको काफी दर्द होता था, नींद नहीं आती थी उस पेन के कारण। तो रमेश भाई ने यह अनुभव सुनाया था, रमेश भाई बाबा को फोन करके बोला करते थे, बाबा कल रात को विश्व किशोर दादा बिल्कुल सो नहीं सके, बहुत पेन रहा। तो अगले दिन जैसे बाबा विशेष उनको सकाश देते थे, और जब सकाश देते थे शक्ति, तो उसकी वो अनुभूति उधर करते थे, और वहां पर फिर वो रमेश भाई का फोन आता था, बाबा आज तो उन्होंने बहुत अच्छी नींद करी, बहुत दर्द से जैसे मुक्ति की अनुभूति की। तो हमारा सकाश भी वास्तव में आत्माओं तक पहुंचता है, और इस बात के अनेक प्रमाण हमें मिल जाते हैं। तो इस रीति से हम सृष्टि की जो तप्त आत्मा है उनको सकाश का अनुभव कराते रहें, और जितना जितना सकाश उन्हें देंगे उतना उतना हमारा अपना भी सकाश का खाता भी भरता जाएगा। एक चौथी बात बाबा ने अनुभव कराई है, और बाबा का इशारा रहा है साक्षी स्थिति का, क्योंकि अभी बहुत ऐसी परिस्थितियां आनी हैं, तो अगर साक्षी स्थिति नहीं होगी हमारी तो कोई ना कोई प्रभाव होगा। अभी 3-4 दिन पहले भी बाबा ने मुरली में बोला, शायद 2-3 दिन पहले, कि एक समुद्र की लहर आएगी और सारे जितने टापू और वो देश के देश वो सब डूब जाएंगे। तो ऐसी ऐसी जो प्राकृतिक आपदाओं की जो आनी है, बाबा ने कहा दुनिया वाले तो कह देते हैं इट इज गॉड्स एक्ट, लेकिन वास्तव में गॉड्स एक्ट तो है नहीं, ये तो प्राकृतिक आपदाएं है, ड्रामा में है, भगवान तो विनाश कराता नहीं। तो इस कारण से साक्षी स्थिति बहुत आवश्यक है। तो उस बात को हम इमेजिन करके अपनी साक्षी स्थिति, और साक्षी स्थिति के लिए, साक्षी दृष्टा के लिए कई बातें बाबा ने बताई हुई हैं, और विशेष करके एक तो यह है, जब साक्षी दृष्टा कहते हैं तो साक्षी दृष्टा कहते हैं तो दृष्टा यानी आत्मा, तो ये नयन ये दृष्टि है और अंदर आत्मा दृष्टा है। तो साक्षी दृष्टा होकर के एक तो हम ये देखें, मैं दृष्टा हूं और इन खिड़कियों से देख रही हूं, ये अनुभूति भी करें समय प्रति समय। और जब ये हो है, मैं दृष्टा इस दृष्टि से देख रही हूं, तो ये निर्भर करता है हमारे दृष्टिकोण पे, हमारा दृष्टिकोण एटीट्यूड कैसा है। और दृष्टिकोण हमारा अगर बहुत पॉजिटिव होगा तो चौथी चीज जो हम बाहर के दृश्य देखेंगे, वो दृश्य हमें निगेटिव भी होंगे तो भी हमें उसमें पॉजिटिविटी दिखाई दे जाएगी। जैसा दृष्टिकोण होगा वैसे ही हमारी, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि कहते हैं। और जब ये दृश्य हमें दिखेंगे और सब पॉजिटिव नजर आएगा तो उससे ही फिर हमारा अंततः द्वापर युग से जो भी इतिहास लिखने वाले होंगे वो हमारा इतिहास लिखेंगे। तो साक्षी दृष्टा के लिए यही कि मैं दृष्टा इस दृष्टि के द्वारा बाहर के दृश्य देख रही हूँ और सभी दृश्य बिल्कुल एक्यूरेट हैं, सत्य हैं। बाबा ने कहा है ड्रामा में कुछ भी इनएक्यूरेट नहीं है, एग्जैक्टली सत्य कलप पहले की तरह रिपीट हो रहा है। इस दृष्टिकोण से अगर हर एक दृश्य देखते चलेंगे तो हम बिल्कुल साक्षी दृष्टा की अनुभूति करेंगे। तो जब ये तीन दिन का समय मिला है तो इन एक दो विशेष गुणों पर हम और ध्यान दें, और इन सबसे विशेष लाभ यही होगा कि हमारी स्थिति जो है ना, जो अचल अडोल होती जाएगी, और उसके लिए आवश्यक है कि हम अपने पर और परिस्थितियों पर दूसरों पर योग के प्रयोग करें। बीच में बाबा की एक लहर चली थी कई मुरलियों की, योग का प्रयोग करो, आप लोगों को याद होगा। तो इसीलिए वो योग के प्रयोग के लिए ये बेस्ट समय है जब आप यहाँ पर आए हैं तीन दिन का लिए। तो एक तो अपने ऊपर योग का प्रयोग करें, इतने दिनों में हम सबको अलग अलग समय मिला हुआ है, कोई 10 साल 20 साल 50 साल से ज्ञान में है, लेकिन एक बार अपना पूरा ऑडिट निकालें और उसमें देखें ऐसा कौन सा संस्कार है जो मैंने पूरा विजयी कर लिया है, उससे खुशी होगी। और जब हम और गहराई में जाएंगे तो ये भी ख्याल आएगा कि कोई ना कोई ऐसी संस्कार रह गया है कमी ही, जिसको मैंने कई बार पुरुषार्थ किया है लेकिन अंश मात्र या कुछ उसका रह गया है, जो समय प्रति समय मुझे एक्चुअली चेतावनी देता रहता है, परेशान करता है। तो इसीलिए उस संस्कार को मिटाने के लिए विशेष योग का प्रयोग अपने ऊपर करो, और ये यहाँ पर एक तो पहला अपने ऊपर, और साथ में आपको याद होगा बाबा की कुछ दिन पहले मुरली थी कि जिनका योग अगर ठीक नहीं है तो बाहर मतलब संदली पर आके भी योग न कराए, वैसा वातावरण बनता है और इसीलिए उसका बोझ उन पे चढ़ता है। भाव क्या है कि अगर हमारा यहाँ पर योग का बिल्कुल अंदर की स्थिति अच्छी होगी, परिपक्व होगी, तो वातावरण भी अच्छा बनेगा और सभी जितने भी योग करने आए हैं यहाँ पर रिट्रीट में इसमें आए हैं तो उनका भी योग बहुत अच्छा रहेगा, उसका एवजा भी हमें मिलेगा। तो इसीलिए एक ये देखें कि योग का प्रयोग अपने ऊपर भी करें, दूसरों के ऊपर भी करें, और अगर हमारी जीवन की कोई ऐसी परिस्थिति है, कोई पेपर है, कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम है उसके ऊपर, और सबसे बड़ी बात है सूक्ष्म योग का प्रयोग उन आत्माओं पर करें जिनको विशेष करके, वैसे तो बाबा ने कहा है सारी जितनी आत्माएं हैं सभी के ऊपर समान दृष्टिकोण रखें, लेकिन फिर भी कोई आत्माएं होती हैं जिनको हम चाहते हैं ये पर्टिकुलर ज्ञान में चलें, जिनसे सहयोग होगा, तो इस कारण से उनको ध्यान में रखते हुए उन आत्माओं को सूक्ष्म वतन में एमर्ज करें और अमृत वेले, और एमर्ज करके फिर हम अपने को भी जैसे सूक्ष्म वतन में एमर्ज करें और अपने थॉट्स को उनके अंदर ट्रांसफर करें, जो भी हमारे विचार हैं उन आत्माओं को में ट्रांसफर करें, और फिर उससे क्या होगा कि जब वो आत्मा जागेगी नींद से या जब वो आत्मा नीचे मतलब अपनी स्थिति में आएगी तो उसे ये महसूस होगा कि ये मेरा अपना विचार है। जब हम किसी को कोई विचार देते हैं तो वो माने या ना माने, लेकिन जब किसी का अपना विचार होता है तो अपने विचार की वैल्यू हर एक को होती है और वो उसको बेस्ट विचार समझता है। तो इसीलिए विचार भले होगा हमारा लेकिन अगर हमने सूक्ष्म वतन में उसको एमर्ज करके ट्रांसफर किया हुआ होगा तो वो ये महसूस करेगा ये मेरा अपना विचार है, और फिर उसमें परिवर्तन अक्सर देखा गया है ये योग का प्रयोग करने से, और वो विचार उसके ऐसे हो जाते हैं जो यज्ञ के अनुरूप। ऐसी बहुत बातें हैं जो बाबा ने बताई हैं, जो ये तीन दिन का समय जो आपको मिला हुआ है इसमें उन सब के ऊपर प्रयोग करके अपने को यहाँ भरपूर करके जाएंगे, ऐसी हमारी शुभ आशा है। ओम शांति, ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद मोहन भाई को। कल मोहन भाई आप सबका क्लास भी कराएंगे 10 से 11, क्योंकि कल उनको धनबाद के लिए प्रस्थान होना है, इससे पहले एक बार फिर आप सबसे मिलेंगे। हम सभी भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, खास आप सबसे मिलने के लिए आए हैं।